الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. صدق الله العظيم. دوستو، بزرگو اور عزیزو، یہاں حاضر ہونے کے مان بعد آپ حضرات کے دیکھنے کے بعد ذہن یہ بات آئی کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ صالحین کے لباس میں ملبوس اتنے لوگ ہمارے سامنے ہیں. صلاح، رشد کی جو ظاہری علامت ہو سکتی ہے، الحمدللہ اس مجمع میں موجود ہے. یہ بھی بہت بڑی سعادت ہے. حدیث پاک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فهو منهم. یہ دوسرے موقع پر لوگ پڑھتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں یہ زیادہ مطابق یہاں ہے، من تشبہ بقوم فهو منهم. صالحین کا جو تشبہ اختیار کرے گا، لباس میں، اعمال میں، تو ان کا شمار بھی انہی میں ہوگا. ہمارے حضرت ماں برادر صاحب رحم اللہ اکثر ایک شعر پڑھتے تھے، شعر تو نہیں یاد رہتا مجھ کو، لیکن وہ فرماتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب گئے اور کہا، یا رسول اللہ، ہم آپ کی تعلیمات پر تو پورے عمل نہیں کر سکے، آپ جیسا دل تو ہم نہیں بنا سکے، لیکن آپ کی صورت میں ہم آئے ہیں، اس وجہ پر ہم پر رحم فرمائیے. آپ کی صورت شکل میں ہم آئے، داڑھی ہے، چھاپا ہے، لباس ہے، اس میں آئے، اس بنا پر ہمارے اوپر رحم فرمائیے. ان لباس کا بھی اللہ کے نبی بہت بڑا درجہ ہے. مجھے ایک روایت یاد آئی کہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو جادوگروں کو ہدایت ہوئی، تو اس کی وجہ یہ ہوئی کہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں وہ جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے لباس میں آئے تھے، اس بنا پر اللہ نے ان کو ہدایت دی. لباس کی بہت عظمت ہے، بڑی اہمیت ہے، لوگ اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے. میں گیا لندن پہلی مرتبہ، تو جس مسجد کا افتتاح تھا اس میں ایک مکتب بھی ہے، مدرسہ بھی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہزاروں طلبہ اسے پڑھتے ہیں، چار گھنٹہ، پانچ گھنٹے کا. جب چھٹی ہوئی تو اسی لباس میں لندن کی سڑکوں پر پھر رہے تھے. مجھے بہت ہی خوشی ہوئی کہ الحمدللہ لندن میں ایسے لباس میں یہ حضرات موجود ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی دعوت ہے اسلام کی طرف، اسلام کی طرف بہت بڑی دعوت ہے. اس کے اندر کشش ہے، ہم ظاہری صورت بھی اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر بھی اثر ڈالے گا. لکھا ہوا ہے کہ محمد علی جوہر برابر جواہر لال نہرو وغیرہ سے بات کرتے رہتے تھے، جانتے ہوں سب لوگ نام، درمیان میں بھی برابر سبحان اللہ الحمدللہ وہ کہتے تھے، بالقصد کہتے تھے کہ یہ موتقی تو نہیں اس کا ہے، لیکن اس کا اثر ضرور اس کو پڑے گا جواہر لال پر. ہم لوگوں کے اندر کمزوریاں ہیں میرے دوستو، اپنے دین کی، اپنے سنت کی جو اشاعت کا دیکھ دائیہ اور جذبہ ہونا چاہیے، اس میں کمی ہے. ہم تو زیادہ انشاءاللہ بھی نہیں کہتے، الحمدللہ بھی نہیں کھاتے. سات کلمات ایسے ہیں جس کو آدمی اس کو بجا لائے, اس کو کہے موقع پر, سعادت اس کو حاصل ہوگی. نعمت ملے الحمدللہ کہے, مصیبت آئے انا للہ انا الیہ راجعون کہے, تعجب کی بات ہے سبحان اللہ کہے, بڑی چیز دیکھے اللہ اکبر, سات کلمات ہیں. اس کی مستقل فضیلت ہے. یہ بھی بچوں کو سکھانا چاہیے, مشق کرانا چاہیے, جگہ جگہ موقع موقع سے اللہ کا نام آنا چاہیے زبان پر. یہ بھی دل میں اثر انداز ہوگا, یہ کلمے بھی اثر انداز. جب سبحان اللہ کہے گا, الحمدللہ کہے گا, اللہ کا نام آئے گا زبان پر, کیا اس کو ثواب نہیں ملے گا؟ ایک مصری عالم نے لکھا ہے کہ سلام کے اشاعت کو اس لیے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کا نام سلام جو ہے بار بار زبان پر آئے گا, جب اللہ کا ذکر کثرت سے ہوگا تو اللہ کی رحمت نازل ہوگی. یہ بھی ایک بہت بڑا فائدہ ہے میرے دوستو. تشبہ یہ بھی وہی ان کے قول میں, ان کے فعل میں, ان کے لباس میں, یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے, اس کو کم بھی نہیں سمجھنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی, اللہم اجعل سیرتی خیرا من علانیتی وجعل علانیتی صالحہ. اے اللہ ہمارے باطن کو ظاہر سے بھی اچھا کر دیجیے, لیکن ظاہر کو بھی صالح بنا دیجیے. یہ جو لوگ کہتے ہیں ظاہر کی ضرورت نہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے درجہ بھی قائم فرما دیا ہے. باطن کی صلاح ظاہر کی زیادہ اہم ہے, لیکن ظاہر کی صلاح بھی کچھ کم نہیں ہے, اسی پر مرتب. خواجہ محمد معصوم نے لکھا ہے کہ جس طرح یہاں ظاہر شرمندہ رہتا ہے باطن سے, قیامت کے بازار میں ہے باطن شرمندہ ہوگا ظاہر سے. ظاہر کو جو اللہ تعالیٰ عنایات فرمائیں گے, دامن گرفتہ بسویم کشیدس نادم بچس میں خود کی جمال تو دیدس, اس آنکھ پر بھی ناز کرے گا. اس آنکھ نے آپ کے جمال کو دیکھا تو آنکھ سے دیکھا, ہاتھی سے تو خانے کعبہ کے دروازہ پکڑا, اس کے پردے کو پکڑا, ہاتھ سے قرآن شریف چھوا, تو کہتے ہیں خواجہ محمد معصوم کتنے بڑے شخص ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح یہاں ظاہر باطن سے شرمندہ رہتا ہے, وہاں باطل ظاہر سے شرمندہ ہو جائے گا کہ یہ انعام اس کو ظاہر میں مل رہے ہیں. اللہ غنی میرے دوستو, ہمارا کلہم, ہمارے کل ظاہر و باطن سب خیر ہی خیر ہے. اس بنا پر ظاہر کی اصلاح بھی بہت ضروری ہے. ہمارے حضرت بادشاہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ علیہ فرمائے کہتے تھے کہ اگر تمام مسلمان جماعت سے نماز پڑھنے لگے تو اغیار اس سے متاثر ہو جائے. سب جماعت سے نماز ہی پڑھنے لگے, اغیار متاثر ہو جائے. میر نماز نے کیا پڑھا کیا ہوا یہ تو دوسری بات ہے, مگر میرے دوستو صالحین کے لباس میں سبھی کو اچھائی معلوم ہوتی ہے, سب اچھا لگتا ہے. بڑے لوگ بھی اور دوسرے لوگ بھی صالحین کے لباس کو اچھا سمجھتے ہیں. ہمارے حضرت خواجہ عزیز الحسن صاحب جو اجل خلفاء میں تھے حضرت تھانوی کے, یہی لباس پہنتے تھے. ڈپٹی انسپکٹر تھے, بڑے عہدے پر تھے, لباس یہی تھا, وہ یہ پہنتے. کوئی انگریز کہتا تھا ہے کہ خواجہ صاحب آپ تو اس لباس میں شہزادے معلوم ہوتے ہیں, آپ تو اس لباس میں, انگریز کہتا تھا شہزادے. ہم لوگ اس کی قدر نہ کریں تو وہی بات. بہرحال آپ نے قدر کیا, مدرسے کا کوئی بھی فائدہ نہ ہو مولوی صاحب, اتنے لوگوں کو صالحین کے لباس میں, اتنے لوگوں کو زمین میں ہم نے پھیلا دیا, یہ کم فائدہ مدرسے کا. مدرسے کا فائدہ میرے دوستو حکومت کو بھی ہے. اتنے لوگوں کے کھانے کا, پینے کا, بجلی کا انتظام مدرسے کر رہے ہیں, ہزاروں لاکھوں, کیا گاؤں کے بار کم نہیں ہو رہا ہے؟ ہم ان کی ملازمت کے ذمہ دار ہیں, ہم ان کے معاش کے ذمہ دار ہیں. اتنے لوگوں سے ہم نے پاری کر دیا حکومت کو, ہم لوگ دوسری چیز کیا کریں گے؟ ہم تو نفع سے ہے نا, پہ مومن وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچتا ہے. بہترین مومن وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ زیادہ پہنچائے. بہترین فائدہ میرے دوستو پہنچ رہا ہے, حکومتوں کو ہم سے پہنچ رہا ہے. جو غلط چیزیں ہیں وہ غلط ہیں میرے دوستو, یہ نہ کہ کیا غلط کام کر سکتے ہیں, صالحین ہیں میرے دوستو, شعار صالحین پر ہیں, لباس صالحین میں ہیں. انشاءاللہ اس کے برکات سے सारे आलम मुस्तफीद होंगे। और एक बात यह भी ध्यान में आई मेरे दोस्तों, ये जो शहादत दी गई ये बहुत बड़ी शहादत है। उलमा ने आपको शहादत दिया है, सनद दिया है, इसकी आपको हमको कदर भी करनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने यह शहादत दिया है, बहुत बड़ी बात है। सनद को मैंने ऊपर रखा और चादर को नीचे रखा, इसलिए मुझे हजरत मोहम्मद शाहुल्लाह साहब का ख्वाब याद आ गया, इसलिए आपको मैंने किया। हजरत मोहम्मद शाहुल्लाह साहब ने ख्वाब देखा कि मैं मुल्ला हसन किताब दिए हुए हूं और ऊपर हम मुसल्ला से लपटे हुए हूं इसको, यानी नीचे किताब है मुल्ला हसन मंतिक की और ऊपर मुसल्ला है। हजरत मोहम्मद थानी से इस ख्वाब बयान किया, हजरत मोहम्मद शाहुल्लाह साहब ने फरमाया आप इंशाल्लाह जामुल मनकूल और माकूल होंगे। जामुल मुसल्ला दलाल कहते हैं बात की इबादत आपको मिलेगी, इल्म इबादत और मंतिक तो मंतिक है ही है, लेकिन यह भी फरमाया कि मनकूल का गलबा होगा माकूल पर, क्योंकि मुल्ला हसन नीचे थी और मुसल्ला ऊपर था, तो कहा यह भी फरमाया है कि जामुल माकूल और मनकूल होंगे लेकिन मनकूल जो है गालिब होगी माकूल पर। तो अच्छा था हमारे हजरत माशाअल्लाह साहब अल्हम्दुलिल्लाह किताब और सुन्नत के माहिर, लेकिन उसके साथ साथ मुल्ला हसन भी पढ़ाते थे, चंदनी भी पढ़ाते थे, सुल्लम भी हम लोगों पढ़ाया है, तमाम जितनी किताबें हैं बलागत की और फसाद की और मंतिक की बहुत खास शगफ है, उसूल अकी नहीं वो सिराजी वगैरह सभी कितनी मतों सिराजी मैंने पढ़ा है, वहां से एक मतों नहीं बहुत शगफ था सिराजी से, कहा निस्फुल इल्म है ये बहुत निस्फुल इल्म। अब मुझसे कहते थे भाई तुम तो मिडल पास हो, तुम्हारे लिए बड़ी आसानी है क्योंकि उसमें हिसाब किताब होता है ना, तो मिडल पास करके मैं गया था, ये भी कहते थे तुम्हारे लिए बहुत आसानी है भाई पढ़ो इसको सिराजी। बहरहाल मेरे दोस्तों इल्म ये बहुत ही मुतबर्रक इल्म है, अजीम इल्म है, इससे बढ़ के कोई इल्म नहीं हो सकता, किताब और सुन्नत से बढ़ के कोई इल्म नहीं है। मैंने कई मतों यहां भी बयान किया है कि इल्म की अजमत उसके नाफोयत से है, जितना नफा उतना बड़ा इल्म, डॉक्टरी में भी वही इल्म ज्यादा अजीम समझा जाता है जिसमें नफा ज्यादा हो, है कि नहीं। सोचते हैं कि कौन से हम इंजीनियरिंग में कौन सा शोभा लें, कौन सा शोभा लें जिसमें ज्यादा आमदनी हो, और आमदनी के अलावा और कुछ है कि हम ज्यादा नफा पहुंचाएं मखलूक को, सिर्फ आमदनी, आमदनी किसमें ज्यादा है, चुना के देखिए लूट मची हुई है, लूट गलत गलत चीजों से ये महाराज में कह रहा था। तो हर इल्म का नफा दुनिया ही सब महदूद है, हर इल्म का नफा दुनिया तक महदूद है। बाद दफे ऐसा भी होता है मेरे दोस्तों कि सनद आई डॉक्टरी के, उसमें तो उसको वफात भी हो गई। एक आदमी थे हमारे यहां के, उनको रात में जजी का परवाना मिला कि जज होंगे और सुबह को वापिल हो गया। ये है दुनिया, दुनिया ये है, मुतयक्कन नहीं है कि वो नफा जो हमारे वहम में है वो हो भी जाए, लेकिन इसका नफा मेरे दोस्तों मुतयक्कन है, आता है। अल्लामा राजी निगार में लिखा है कि एक बुजुर्ग कब्रिस्तान से गुजरे, एक शख्स पर अजाब हो रहा था, जब उधर से लौटे तो अजाब नहीं हो रहा था, तो उन्होंने अल्लाह की तरफ रुजू किया और दरख्वास्त की, अल्लाह बतलाइए क्या बात है, अभी मैं गया तो अजाब कब्र में मुब्तला था और आया हूं तो अजाब कब्र से इसको निजात मिल चुकी है, इल्हाम हुआ कि अभी भी इसके लड़के ने बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कहा है तो मैंने इसको माफ कर दिया, कि इसका बाप मुझको रहमान और रहीम याद कर रहा है, मैं इसके बाप को सजा दूंगा अजाब दूं। मेरे दोस्तों बिस्मिल्लाह रहमान रहीम लड़के ने कहा अब बाप की निजात हो गई, ये मामूली इल्मी यकीन होना चाहिए हमको, आपकी यकीन इन चीजों पर तस्दीक होनी चाहिए, बहुत बड़ी चीज है। हमारी तरफ का एक वाक्य है गालिबन मां नसीर अहमद नसीराबादी का ये वाक्य है या किसी का बहरहाल उदरी का वाक्य, किसी आलिम ने बयान किया कि जो शख्स बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कह करके नदी में कदम रख दे तो खुश हो जाएगा, वो पार हो जाएगा। एक देहाती आदमी ने कहा बड़ा अच्छा नुस्खा मिला, यहां आने जाने में हजरत के यहां आने जाने में एक नदी पड़ती है, उसे एक कश्ती करना पड़ता है, बाद कश्ती मिलती है नहीं मिलती है हमको परेशानी होती है, ये बड़ा अच्छा नुस्खा मिल गया। चुनाचे इतना यकीन था है कि वो जाते थे बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कहा न कश्ती न नाव, निकल जाते थे आते थे जाते थे। यद्यपि उनके जहन में आया कि भाई मौलाना को ऐसी इतनी बड़ी शहादत हमको मिली है, इतना बार नुस्खा मिला है, इतना हमारा रुपया बच रहा है इसकी वजह से, ले मौलाना की दावत कर दो। दावत किया, जब गए नदी के किनारे तो मौलाना भी खड़े वहां खड़े हो, कहा भाई जाओ कश्ती लाओ, कैसे पारो? कहा हजरत आपको दर्शी की जरूरत है? अरे आप ही के नुस्खे पर अमल करके तो मैं हमेशा आता जाता हूं। कहा भाई ये तुम्हारे तस्दीक और ईमान की बात है, हमारे लिए तो अभी कश्ती ही की जरूरत है। ईमान और तस्दीक बहुत बड़ी बात है। सूरह फातिहा मेरे दोस्त, सूरह शफा भी तो है। हमारे हजरत माशा रसुल्ला साहब का इतना एतकाद था इस पर कि जब दर्द होता था हम रोज कहते थे कि पढ़ो भाई, पढ़ करके सूरह फातिहा फूको, दम करो। लेकिन ये भी साथ कहते थे दिल से पढ़ना, दिल से पढ़ना, दिल से पढ़ोगे तब सवाब होगा। तस्दीक की कमी हो रही है। आता है रवायतों में कि अखीर जमाने में तस्दीकात में कमी जोर पैदा हो जाएगा। आज जितनी माशी हैं उसकी वजह यही है, आखिरत का खौफ, खुदा के सामने पेशी के खौफ बहुत कमजोर होता जा रहा है। ऐसी ऐसी चीजें सुनने में आ रही हैं, बेईमानी की, दगाबाजी की, बदयानती की, कि ताज्जुब होता है कि मुसलमान से कैसे चीज वाकई हो रही है। ताज्जुब होता है, अल्लाह महफूज रखे। लेकिन उसी वक्त कहता है अल्लाह महफूज रखे, मालिक कब किसका ध्यान बदल जाए, हम ही ठीक रहे। इस बिना पर बहुत ज्यादा तस्दीक के ईमान की जरूरत है, कमाल ईमान की बात है। जिस तरह ईमान जरूरी है, साहब तरसिल जवाहिर बकिया ने लिखा है और मैंने मारसे सूफिया में इसको नकल भी किया है। और हजरत हमारे बहुत इस पर खुश होते थे, फरमाया उन्होंने कि जिस तरह ईमान जरूरी है इसी तरह कमाल ईमान भी जरूरी है। उसी कमाल ईमान के लिए बुजुर्गों की खिदमत में जाया जाता है। ईमान तो आई, ईमान के बाद कमाल ईमान की जरूरत है, तकमील ईमान की जरूरत है। दोस्तों हजरत कादी साहब अल्लाह पानीपति ने लिखा है कि कमाल यह है कि दीन की मोहब्बत हो और दीनदारों की मोहब्बत हो, दीन की मोहब्बत हो और दीनदार कहता हूं उनका है। कमाल की तारीफ ही कर दिया उन्होंने, कमाल किया उन्होंने, उन्होंने कमाल ही किया। इतना सीधे साधे अल्फाज में कह दिया। हजरत वध करते थे इस तफसीर पर, हमको वध ना हो हम जाने है। लेकिन ये हजरत साहब हाल थे, इल्मी बातों पर तो वध आ जाता था। देखो कभी उनका बात कही कमाल की, कमाल और कमाल की तारीफ यह है कि दीन की मोहब्बत हो और दीनदारों की मोहब्बत हो, यह कमाल है। और फरमाया कि जहां ये काम होता हो वो दारे तकनील है, तकनील माल हुआ जो खानकाहों में और ऐसी जगहों में जो काम होता है बुजुर्गों के यहां, वो तकमीली काम होता है। इसी चीज के पैदा करने के लिए जाया जाता है कि हमारे ईमान में कमाल पैदा हो, जो तस्दीक हो उसके अंदर कुव्वत पैदा हो जाए, उसके अंदर मजीद रसूख पैदा हो जाए। ये बहुत बड़ी नेमत, बहुत बड़ी दौलत है। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों ये बहुत बड़ी नेमत, अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे। तो मैंने कहा एक और बात कह लूं, सभी के काम की है। हजरत बादशाह रसूलुल्लाह साहब आफियत की तारीफ करते थे और सैयदना रफाई ने ये तारीफ किया है कि आफियत ये है उसी कमाल दीन पर, जैसे इस पर लुबर्द आता था। कहा जितने मौलवी लोग बैठे पूछो आफियत हमारे बतला देते जाने, वहां यह भी होता था बहुत, मौलवी सब मौलवी लोग रहते थे ज्यादा आस पास बनते नजर एकदम मौलवी लोग। कहा मौलवी लोग बतला देते जाने आफियत की तारीफ। सैयदना रफाई फरमाते हैं कि आफियत यह है कि सांस आसानी से आए जाए, रोजी बिना मुशक्कत के मिल जाए, सांस आसानी यानी मर्द न हो और रोजी बिना मुशक्कत मिल जाए और अमल इखलास से होने लगे, यह आफियत है। सबसे ज्यादा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आफियत ही के दवा फरमा देते, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल आफिया व दवामल आफिया व शुक्रल आफिया, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल युस्रल मुआफात फिर दुनिया वल आखरा, आफियत की दुआ। और हर आदमी करना चाहिए, इस इस्तेहजार के साथ करना चाहिए, अल्लाह ताला रोजी में हमको सहूलत दे, रोजी हासिल करने में सहूलत दे, बीमारियों से अल्लाह महफूज रखे, अमल इखलास से होने लगे, ये बड़ी बात है। सरा यही फलाह दारन है और यही आफियत है। आफियत बहुत बड़ी नेमत, बहुत मौलाना अब्दुल हई फरंगी महरी ने लिखा है कि आफियत ही की दुआ करना चाहिए, किसी नबी या वली ने गैर आफियत की दुआ नहीं किया है। माम अब्दुल हई फरंगी महरी, किसी नबी या वली ने गैर आफियत की दुआ नहीं किया है, सबने आफियत की दुआ किया है। हाँ उसके बावजूद अगर मुसीबत आई तो उसको सब्र किया है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों तरीक को भी समझने की जरूरत है। बाद लोग कहते हैं कि मैं बहादुर हो गया हूं, मैं जो चीज आया बर्दाश्त नहीं बर्दाश्त कर सकते, मुसीबतों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस बिना पर आप यकी का सवाल करो। एक बुजुर्ग थे, उनके एक दूसरे बुजुर्ग घाड़ी का हाल है, अमीरों में से किसी का है, मतलब सहारनपुर, तो क्या हजरत हाई साहब गालबन हजरत गए, अच्छे एक बुजुर्ग थे, वो मरीज थे, गालबन हजरत हाई साहब तशरीफ ले गए और कहा भाई इतने दिनों से तुम बीमार हो, अच्छे क्यों नहीं हो रहे हो, इतनी दुआ की जा रही है। तो पता नहीं, कहा अच्छा बताओ कि तुम बीमारी में क्या कहते हो। कहा मैं ये कहता हूं। कहा देखो हाय हाय किया करो, कभी हाय हाय किया करो, अपने आजिजी का इजहार करो तो शफा पा जाओगे। आजिजी का इजहार, बीमारी जो है आजिजी के इजहार के लिए होती है, अपने को आजिज समझे, यह भी बहुत बड़ी बात है। आजिज समझ लिया अल्लाह के सामने, अपने आजिजी को पहचान गया, मन अरफ नफ्स हु अरफ रब, जिसने अपने आजिजी को पहचान लिया, अपने रब को पहचान लिया। दोस्तों आजिजी कुछ नहीं कर सकता आज इस बिना पर। दोस्तों बुजुर्गों, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किसी ने कहा कि हजरत क्या हाल आपका है। कहा बीमार हूं। कहा हजरत आप कहते हैं बीमार हूं। कहा और का बीमार हूं तो अच्छा कहूं अपने को झूठ। दोस्तों बुजुर्गों, ये तारीख है, तारीख में आजिजी, इनके साथ शिकस्तगी, अल्लाह के साथ भी और अल्लाह के बंदों के साथ भी। किब्र का जुमला तो आन ही नहीं चाहिए, बड़ाई का तो ये वाहमा भी नहीं होना चाहिए कि हम इससे बड़े हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा सवाल किया या रसूल अल्लाह, हर शख्स को अच्छा कपड़ा पसंद है, अच्छा दुआ पसंद है, सवारी अच्छी पसंद है, सब चीज पसंद है, क्या यह किब्र है? फरमाया नहीं, ये किब्र नहीं है। किब्र ये है ऐसे कपड़े पहन के दूसरों को जलील समझे, ये किब्र है। मालूम है ये भी एक रज़ीला है, लेकिन इस रज़ीले को भी नहीं समझते। सिर्फ वसवसे के दर्जे में कोई चीज आ जाना ये रज़ीला नहीं है, बल्कि अमली तौर से ताना उसको जलील समझना, अपने पास न बैठने देना, उसको झुटकारना, ये है किब्र। दोस्तों बुजुर्गों, ये तरीक है, इस तरीक को समझने की जरूरत है। बहुत से लोग गलता और पेचा रहते हैं, वसावी जैसे अल्लाह ताला के बारे में आते हैं, मेरे दोस्त अपने बारे में आ जाए बढ़ाई के, ये मम्मी नहीं है। तौबा तो उससे भी करो है, लेकिन मश करो ऐसी है कि दिल में आजिजी पैदा हो जाए। अल अज़्ज़ फ़ख़री, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं आजिजी मेरे लिए फख्र की बात है, किब्र फख्र की बात नहीं है, बड़ाई फख्र की बात नहीं है। हमारे हजरत अबू का सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं है कि बड़ा अच्छा हुआ कि अल्लाह ताला ने अपने दरबार में पहुंचने के लिए आजिजी की शर्त लगाई। अगर कुदरत की शर्त लगाते तो हम कैसे पहुंचते? आजिजी तो हर आदमी अख्तियार कर सकता है। इस बिना पर तरीके जान है मेरे दोस्तों, ये आजिजी ये नहीं है, है कि आपने कुछ पढ़ लिया और लिख लिया तो गुरूर दूसरे पर। और अगर गौर करेंगे तो इल्म क्या हम लोगों का है। जब मूसा अलैहिस्सलाम का इल्म ऐसा था कि खिले इस्लाम ने तो बतलाया है कि चिड़िया ने जमीन कार में पानी लिया तो समुन्दर से क्या निस्बत है, कहा कुछ भी नहीं निस्बत है, क्या निस्बत है। मूसा अलैहिस्सलाम का इल्म खुदा के इल्म के सामने किया था, कहा माशुमा का क्या इल्म है, चंद अल्फाज तो कौमे दे हरूफ दरमानी है, चंद हरूफ अयुहल कौम लदी फिर मदरसा कुल्लु मा हस्सलतुमुहुल वसवसा सबसा विषय। इस बिना पर इन चीजों को मेरे दोस्तों हकीकत पैदा करने की जरूरत है। सूरत ये भी बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन अगर इस सूरत में सीरत दिया जाए तो बहुत बड़ी नेमत, आदमी कामिलुल ईमान हो जाए, वारिसुल अंबिया हो जाए। वारिसुल अंबिया इसी सूरत में होगा, जबकि जामिउल इल्म वल अमल, जामिउल जाहिर वल बातिन, जाहिर वल बातिन का आमिल। इस बिना पर तशब्बुह पर मुझे याद आई बात कि अल्लाह ताला का कितना बड़ा फज़ल है कि इतने लोग सालिहीन के लिबास में है। ये बहुत बड़ी मेरे दोस्तों, ये करामत है मदरसों की कि इतने लोगों को महलों में और शहरों में घुमाते हैं, सबकी नजरें उड़ती हैं, ये कौन लोग जा रहे हैं सालिहीन के लिबास में, शियार सालिहीन में। कोई ऐसे ही बदबक होगा जो उसको नापसंद हो, सबको अच्छा मालूम होता है। इस बिना पर आफियत दारैन की दुआ, इसी तरीके से जाहिर के साथ बात बातिन की दुआ, आफियत की दुआ हम सब लोगों को करना जरूरी है। अल्लाह हम सब लोगों को इसके तौफीक दे कि अल्लाह ये मरद से जो हमारे हैं, मेरे दोस्तों बहुत बड़ी नेमत है, इस जमाने में बहुत बड़ी नेमत है। बहुत बड़ी दौलत है, इसकी हमको कदर करनी चाहिए। अगर ये ना हो तो जनाजे की नमाज पढ़ने वाला कोई नहीं मिलेगा। सतना में गया, मां सिद्दीक साहब भी थे, मौलाना ने कहा कि इलाहाबाद से सतना करीब पड़ता है, तुम आया करो, क्योंकि यहां जनाजे की नमाज पढ़ने वाले लोग भी नहीं है, वैसे दफन कर दिए जाते हैं। मालूम हुआ कि इलाहाबाद से कितनी दूर है सतना। लेकिन वाकई इन मकातिब के न होने की वजह से, मदारी के न होने की वजह से जनाजे की नमाज पढ़ाने वाले भी नहीं है। मौलाना ने बहुत कोशिश किया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत काम किया, मकातिब काम किया, अल्लाह सब लोगों को जो इस वक्त जारी रखे हुए हैं मकातिब को, अल्लाह सबको जजाए खैर मरहमत फरमाए कि दीन पहुंच रहा है, दाखिल हो रहा है। मैं जाता हूं अफ्रीका, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से वादियों में पहाड़ियों पर जाना ही होता है, छोटे छोटे मकातिब हैं वहां, उसकी बरकत से तामीर भी हो गई है, कोई इमारत भी है, वहां जाकर के जमातें ठहरती हैं, वहां उनको काम करने में आसानी होती है। तो मकातिब की ये फायदे, पहले लोग जाते थे मुझसे, वहां के लोगों ने खुद कहा, जमाते जाती थी, मच्छर ने काटा, मक्खी ने कहा, मक्खी भी काटते वहां, मक्खी ने काटा, हाँ कितने मर जाते थे बुखार में। लेकिन इन मकातिब के जरिए से अल्हम्दुलिल्लाह इसका भी इंतजाम है, जिसकी वजह से तालीमी काम भी हो रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह तबलीगी काम भी हो रहा है। अल्लाह ताला हम सब लोगों को तौफीक दे, जो जिसका काम है खुलूस से करने की जरूरत है, इखलास से काम करने की जरूरत है। अल्लाह के यहां बहुत से रास्ते हैं, हाँ अतरु को इल्लाह बे अल्फाज खलाइक, अल्लाह के रास्ते बहुत हैं, मखलूक के सांसों के बराबर है। हाँ मेरे दोस्तों, सुन्नत की इत्तबा और मुताबात हर जमात के लिए लाजिम और जरूरी है, हमेशा गौर करना चाहिए है कि हमारा कोई इन्हराफ, कोई रास्ता इन्हराफी तो नहीं हो रहा है, कोई हमारा कदम में इन्हराफ तो नहीं पैदा हो रहा है। इसकी क्यामत तक जरूरत रहेगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शायद फरमाया कि उम्मत मोहताज रही क्यामत पर कि किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह पर अपने हर कौल और फेल को पेश करे, और पेश करने के बाद अगर माफी को कबूल करे वरना रद्द कर दे। इसलिए इमाम अबू हनीफा का कौल नहीं है, उन्होंने कह दिया इस सबके लिए है, हमारे लिए भी है कि जो आप तरीका इख्तियार किए हैं गौर कीजिए, है कि इसको में कोई गलत चीज तो नहीं आ रही है, कोई बिदअत इन्हराफी चीज तो नहीं आ रही है। इस बिना पर जब तक अपने कौम से हम बाखबर नहीं होंगे, अपने काम से, काम में गलतियां आ सकती हैं और इन्हराफ पैदा हो सकता है, इस बिना पर हमेशा खास तौर से बड़ों को इसकी तरफ निगाह रखनी चाहिए और इंसाफ के साथ और अदल के साथ अपने हालात में गौर करते रहना चाहिए, है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से किसी दर्जे में इन्हराफ तो नहीं पाया जा रहा है। इस बिना पर मेरे दोस्त, ये मदारिस इसीलिए है, ये मदारिस में उलमा पैदा होते हैं जिनके सामने किताबुल्लाह है, सुन्नत रसूलुल्लाह है, इसकी रोशनियां हैं। इस रोशनियों के तहत हजरत जुनैद फरमाते हैं है कि तरीकुना मुशय्यद बिल किताब व सुन्ना, हमारा तरीक किताब व सुन्ना से मुशय्यद है। किताब एक हाथ में हमारे किताबुल्लाह का आफ्ताब है और दूसरे हाथ में सुन्नत रसूलुल्लाह का महताब है। इन दोनों रोशनियों में हम रास्ता तय कर रहे हैं। हमारे मशायख, हमारे अकाबिर अल्हम्दुलिल्लाह उसी मिनहाज पर और उसी तरीके पर अब तक काम किया है। अब काम हम लोग तक पहुंचा है, हम लोग देखो क्या करते हैं, आगे क्या बढ़ाते हैं। सबसे मैंने कल भी कहा और बहुत कहा, अल्लाह के शुक्र की हर आदमी को अपने आखिर में अपने काम की फिक्र होती है। खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिक्र थी और बे इंतहा फिक्र थी, और हर आदमी को फिक्र होती है। हजरत महाशाह रसूलुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह बराबर फरमाते थे कि मैं बूढ़ा हो गया है, कोई काम करने वाले लोग नहीं पैदा हुए, मैं कहां जाऊं, मैं कहां। हर आदमी को, हर शेख को, हर मुक्तदा पेशा जो जिम्मेदार है उसको जरूरी ख्याल ये होता है कि हमारा काम इस तरीके पे कोई कर भी पाएगा या नहीं करेगा। इस बिना पर उसको अफसोस भी होता है, हसरत भी होती है, खाई भी होती है, अल्लाह से दुआ भी करता है। खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी फिक्र थी, तो आज अखीर तक के लिए आपने हिदायत भी फरमाई और नसीहतें भी फरमाई। मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फसाद उम्मती फलहु अजर मेते शहीद, ये क्या इसीलिए है मेरे तरीक को पकड़ना, मेरे तरीक को फसाद उम्मत के वक्त पकड़ना बहुत बड़ी सवाब की चीज है, बहुत बड़ा सवाब का अमल है। क़यामत तक ये नसीहत फरमाई है कि अजू बिन नवाजी, मेरी सुन्नत को मजबूती की से पकड़ो, फितनों से बच जाओगे। मशहूर हदीसें मौजूद हैं, ये क्या बात है, अपने काम की हिफाजत ही के लिए सब कुछ कर रहे थे, अपने काम के हिफाजत के लिए कि मैं काम छोड़ के जा रहा हूं, उम्मत पर छोड़ के जा रहा हूं, उम्मत इसके साथ क्या मामला करेगी। अल्लाह ताला हम सब लोगों को उन उम्मतियों में से बनाए जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की हिफाजत में किसी दर्जे में शरीक हो जाए। ये बहुत बड़ी नेमत और बहुत बड़ी दौलत होगी। तो मेरे दोस्तों, ये मदारिस, ये जमातें सब उसी अंदाज में काम कर रही हैं। अल्लाह ताला इखलास के साथ करने की जरूरत है। कोई तस्वीर तारीफ करता है वो भी सोचता हुआ लिखे है कि हमको ऐसी ऐसी बात लिखना है जिससे उम्मत को नफा हो। ये नहीं कहना आप शाम जो चाह लिख दिया, लिखने में भी कागज ज्यादा सर्व न करो, स्याही सर्व न करो, रोशनी सर्व न करो। इसमें नहीं, मुझ ने इस्लाम मर तर्क हूं माना, यानी नायानी बातों को तर्क करो। ये नहीं कि अब लिखने पाया ना शाम जो चाह लिख दिया, नहीं मेरे तो सोचो है कि ये कागज हम स्याह कर रहे हैं, कोई फायदा भी इसके लिखने की नहीं, सिर्फ अपने इल्म का जतलाना है, ये और कोई बात है। इसमें हजरत महाथानी फरमाते थे कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कागज को भरने के लिए सोचते रहते हैं किस तरह कागज भर जाए। कहा मैं कहता हूं ये उसी में से है कि लायानी बातें कर रहा है लिखने में। लिखने में भी लायानी बात है, जैसे बोलने में लायानी बात है, लिखने में भी लायानी बात है। मैं देखता हूं कि बहुत से लोग ऐसे मलफूजात भी लिखते हैं जिसका कोई नफा नहीं, सवाल इससे इंतजार पैदा हो इंतजार। इस बिना पर मलफूजात के लिखने में भी, मकालात के लिखने में भी इस चीज की रियायत होनी चाहिए। हमारे हजरत माशाअल्लाह फरमा देते हैं कि देखो मेरे मतलब अब आगे पूरी बात नहीं कहूंगा क्योंकि मेरी बात आती है उसमें। कहा मेरे मजमून में कोई ऐसी बात नहीं होना चाहिए है जो बाद में काबिल एतराज हो। और बहुत बड़े आदमी ने कहा कि उनके मलफूजात में बहुत सी बातें ऐसी रह गई हैं जो काबिल एतराज है। इस बिना पर मैं नहीं चाहता तुम लोग जिम्मेदार हो कि मेरे मजमून में ऐसी बातें नहीं आनी चाहिए। मेरे दोस्तों, बुजुर्ग को लिखने में भी, बोलने में भी, चलने में भी एहतियात, बहुत ज्यादा एहतियात। अमल करने के लिए सनत, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक साहबी ने कहा या रसूलल्लाह मन नजात नजात चीज में है। फरमाया अमल करने के लिए सनत, अपनी जबान की हिफाजत करो। मेरे दोस्तों, खास तौर से इन मिंबरों को बैठ कर जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्सी है, ऐसी बात ना कहो जो कुलूब के अजियत का सबब बने, उम्मत के इंतजार का सबब बने। बहुत मुहताब तरीके से रहना। आप हजरात को सनद दी है, शहादत है, इस बिना पर जबान की हिफाजत बहुत जरूरी है। ऐसी बात हो जो लोगों के लिए मुफीद हो, नाफे हो, इस बिना पर इन चीजों की रियायत आप करेंगे इंशाअल्लाह अजीज दीन का आपसे काम होगा। आप मेरे दोस्तों नुमाइंदा हैं, पूरी उम्मत के नुमाइंदा हैं। आप हजरात को जो सनद दी गई मामूली नहीं है, आपको उम्मत की तरफ से नुमाइंदगी दी गई है। हजरत मौलाना थानवी की तरफ से कुछ नुमाइंदे थे, मौलाना अबुल फजल साहब, महाचार साहब, ये कि हमारी तरफ से ये जवाब देंगे। कोई बात हमारे पास आती है, हमारी तरफ से ये जवाब देंगे, मौलाना अबुल फजल साहब फला फला। इसी तरीके से पूरी उम्मत की तरफ, उम्मत पर कोई बात आएगी तो आप उसका जवाब देंगे। इस बिना पर आप इतनी इस्तेदाद भी पैदा कीजिए, किताबी और सुन्नत के मुताबिक ऐसे उलूम हासिल कीजिए कि जिससे आप दंदान शक्ल उनका जवाब दे सकें। इल्मी इस्तेदाद भी होना चाहिए, सलाहियत होनी चाहिए, वकार होना चाहिए, एतदाल होना चाहिए, वकार भी आदमी का एक होना चाहिए। आपको मालूम है फस और इला जिक्रिल्लाह में आया है, उलमा ने लिखा है कि नमाज के बाद दौड़ने में भी एतदाल होना चाहिए, वकार होना चाहिए। एक ऐसे दौड़ों मालूम है क्या, ये दौड़ने कोई शिकार वर्ग के पीछे दौड़ रहे हैं क्या? नहीं दोस्तों, ऐसा भी नहीं। वकार शरीयत कुल के कुल वकार है, एतदाल है इसके अंदर है। मेरे दोस्तों, इसके अंदर भी हम गए थे, कुवैत में गए थे, तो एक आदमी ने कहा मौलाना क्या बतलाया जाए, लोग आते हैं मदरसों की तरफ से तो होटल, जब सब होटल बंद हो जाते हैं तो ये खड़े होकर के पान खाते हैं, थूकते हैं, क्या रहेगा वकार? जो हमारे दारुलूमों की तरफ से नुमाइंदा बनकर जाते हैं वो भी अपने वकार को बाकी नहीं रहते। वो तो वकार ही वकार वहां है, वो दिन रात से निकलते ही नहीं, निकलते नहीं। आप भरे होकर पान खा रहे हैं, थूक रहे हैं, हंस रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं रमजान में है, रमजान मतलब रात ही में, दिन में नहीं कहता मैं, लेकिन ये चीज वकार की तो खराब है ही। इस बिना उलमा को भी अपने वकार की हिफाजत जरूरी है, चाहे वो इनके वकार से, मेरे दोस्तों दीन का वकार है, शरीयत का वकार है। इस बिना पाए चीजों से बहुत ज्यादा लिहाज। आपको अल्लाह ताला ने शहादत दी है, तालीमी शहादत दी है, इस्लामी शहादत दी है। अब तक तो सलाह और इल्म के तअल्लुम में थे, लेकिन अब तो अब तालीम जिम्मेदारी है। اس بنا پر حفاظ کرام کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سینے میں قرآن کو محفوظ کر دیا ہے. یہ ان کی عنایت ہے جو محفوظ کر دیا ہے, آپ کے بس کی بات نہیں تھی. اللہ نے سینے میں محفوظ رکھا, اس کی قدر کیجیے. آتا ہے روایتوں میں, کسی بزرگ نے کہا ہے جو حامل قرآن ہوتا ہے اور وہ کوئی معصیت کرتا ہے تو قرآن اس کے سینے سے کہتا ہے لہذا ہمدنی, اس کے لیے تم نے سینے میں مجھ کو رکھا ہے کہ معصیت کرو میری, گھر میں بلا کر کے میری نافرمانی. میرے دوستو, بزرگ کو ان چیزوں کا استحضار ہوگا, معصیت سے ہم بچیں گے, گناہوں سے ہم بچیں گے. قبائل سے کیا, قبائل سگائل سے پھر کیا ہے؟ یا عالم و خائنۃ العین وما تخفی الصدور, یا عالم و خائنۃ العین. پہلے آنکھوں کا, تمہاری آنکھوں کو بھی اللہ جانتا ہے, دیکھ کہ تمہاری نگاہ جا رہی ہے اور سینے میں جو ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اللہ غنی, قرآن کیا ہے میرے دوستو, ہے کمر بستہ کرنے والا ہے, آخر طرف متوجہ کرنے والا ہے. قرآن سے بچے کوئی واعظ نہیں ہے, قرآن سے بچے کوئی واعظ نہیں ہے. سنت رسول اللہ نے اس کی تشریح کیا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قرآن تھا, قرآن کی آپ نے تشریح کیا ہے. یہ جتنے کتب خانے بھرے ہوئے ہیں یہ سب قرآن پاک کی تفسیر اور توضیح ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 23 سالہ زندگی میں کیا ہے. اور فقہ جو کچھ کیا فقہ نے میرے دوستو, سب کتاب و سنت کی تشریحات ہیں. صوفیہ نے جو کچھ بھی کیا ہے, فتوحات ربانیہ اور امانی مکیہ لکھا ہے, صرف اسی کتاب و سنت کی